यस्मिन् यदा तु यस्मिन् किसी स्थान में यदा जब पुष्कर नाभ अर्थात भगवान की माया से दुरंतया दुर्लंघ्य लांघने के लिए कष्टप्रय स्पृष्ट धियः मोहित पृथक दृशः भिन्न भिन्न प्रकार से देखने वाले पुरुष कुर्वन्ति करते हैं तत्र वहाँ ही निश्चय ही अनुकंपया दयावश कृपाम कृपा एवं अनुग्रह न कभी नहीं साधवः साधु पुरुष दैव बलात् विधाता के द्वारा कृते किया गया क्रमम शौर्य। अनुवाद इस प्रकार से है, हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लंघ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी व्यक्ति कभी कभी पाप करते हैं तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता, ये जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वो उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कहा गया है कि तपस्वी का अलंकार क्षमाशीलता है। संसार के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उदाहरण के तौर पर परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही शाप दे दिया था और यद्यपि बालक के पिता ने खेद व्यक्त किया था किंतु महाराज परीक्षित ने शाप स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण बालक के इच्छानुसार एक सप्ताह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होना स्वीकार कर लिया। महाराज परीक्षित सम्राट थे और भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण थे किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान एवं दया के कारण उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को नहीं रोका वरन 7 दिनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त करना स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करे जिससे श्रीमद् भागवत की शिक्षा विश्व में प्रकट हो। फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वे कोई बदला न ले। वैष्णव अन्यों के लाभ के लिए सहिष्णु होता है, जब वो अपने शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता तो इससे ये नहीं सूचित होता कि उसमें शक्ति का अभाव है, वरना इससे ये पता चलता है कि वो संपूर्ण मानव समाज के लिए कल्याण के लिए सहिष्णु है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य धनंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथांवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, सभी वैष्णवों को जो ब्रजवास कर रहे हैं वृंदावन में, और आपके आशीर्वाद से ही मैं कुछ शब्द कहने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग है आप लोग कई दिनों से सुन रहे हैं कि दक्ष राजा के यज्ञ में सती देवी गई और उनका अपमान हुआ, फिर शिव जी आए और बहुत बड़ा ऐसे घटना भयंकर घटना हुई जो हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े विद्वान संत जन भी इस भौतिक दुनिया में ऐसे ऐसे प्रसंगों का अनुभव करते हैं और ऐसे अनुभव होते हैं। उसके पश्चात शिव जी के द्वारा बहुत सारा संहार भी होता है, दक्ष का शीश जो है वो कट जाता है और भग के दांत टूट जाते हैं और भृगु के शायद और कुछ नुकसान हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों के भयंकर नुकसान होते रहते हैं और उसके बाद में फिर सभी देवतागण आकर शिव जी की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उसके बाद में स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं। सब देवतागण जब स्तुति करते रहते हैं पूजा करते रहते हैं तो शिवजी महाराज आंख बंद करके ध्यानस्थ बैठते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं तो शंकर भगवान अपने स्थान के उठकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव जी के पिताजी हैं, उनके ही भ्रुकुटी मध्य से शिव जी का जन्म हुआ था और ऐसा होने पर भी वो महादेव हैं और स्वयं ब्रह्मा भी उनकी पूजा करते हैं। इतना बड़ा शिव जी का स्थान है जो आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, सभी महादेव सभी देवता महादेव जी के इस गौरव को जानते हैं। तो इस समय ब्रह्मा जी आकर शिव जी को उनका गौरव कर रहे हैं, उनकी स्तुति भी कर रहे हैं और उनको विनती भी कर रहे हैं कि आप कृपा करके शांत हो जाइए। वैसे शिव जी महाराज चाहते तो और भी अधिक ध्वंस कर सकते थे, उनके अंदर तो प्रलय की शक्ति है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो तमोगुण का आधिपत्य करते हैं और साथ साथ प्रलय का कार्य भी करते हैं, जब वो तांडव नृत्य करते हैं तो सब नाश हो जाता है। फिर भी शिव जी बड़े संयम से यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं और जो जो अनुकूल दंड देना है देना चाहिए वो उन्होंने दे दिया है और उसके बाद ब्रह्मा जी उनको विनती कर रहे हैं कि कृपा करके आप और अधिक क्रोधित मत होइए, सब पर कृपा कीजिए। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में वर्णन करते हैं, क्षमाशीलता जो है वो वैष्णवों के स्वभाव का एक सुंदर अलंकार है। क्षमाशीलता ये हर एक प्रामाणिक वैष्णवों को आत्मसात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्षमाशीलता ये ऐसा एक सद्गुण है जो वैष्णव समाज को जोड़ता है, विश्व को भी एक होने में मदद करता है। जैसे हम देखते हैं कि क्षमा कब होती है, जब अपराध होता है, जब कोई हमको अपराध करता है तो हमें उनकी माफ़ करने की अपेक्षा की जाती है हमसे, और अपराध ये इसका जड़ है, क्योंकि अपराध जब होता है तो ही ये भावनाएं प्रकट होती है कि माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये जो अपराध की भावना है जो भक्त लोग अनुभव करते हैं कभी कभी उनके प्रति होता है या दूसरे के लिए वो कर देते हैं, या हमारे रिश्तेदार जो भौतिक दुनिया में रहते हैं उनकी तरफ से हमको अपराध होता है या हम उनका अपराध कर देते हैं, तो मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भौतिक दुनिया के त्रिगुणों के प्रभाव से लोग कर्म करते हैं और उसके द्वारा अपराध होता है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अपराध जो होता है वो जब हम अपने आप को माया के शक्ति के प्रभाव में छोड़ देते हैं तो त्रिगुणों के प्रभाव से फिर हम कर्म करते हैं और उन कर्मों के प्रभाव से फिर हम अनजाने में अज्ञान के वश दूसरों का अपराध करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरण लेते हैं अंतरंगा शक्ति की, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरात्या माम एव ही प्रपद्यंते मायाम एवं तरंदिते, जब हम दैवी गुण का आश्रय ग्रहण करते हैं दैवी शक्ति का, तो फिर ऐसे अपराध होते भी हैं फिर भी तुरंत माफी की भावना हृदय से प्रकट होती है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ऐसे भावनाओं के वश में जाकर दूसरों का अपराध करते रहते हैं और जिनका अपराध होता है वो अहंकार वश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उसका बदला लेने का प्रयास करते हैं। ये सामान्य दुनिया की रीति है, हम सब देखते हैं दुनिया में सारी जो फिल्में बनती है वो कैसे बनती है, बदले की आग, सब लोग इस भावना को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं कि मैंने बदला लिया और मैं लूँगा और मैं दिखाऊँगा कि मेरे में क्या शक्ति है, वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझ में क्या शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब ये दुनियादारी की आम बातें हैं। बाहर की दुनिया में सब लोग इसी भावना में रहते हैं क्योंकि इसके पीछे अहंकार होता है कि मैं कुछ हूँ, नम्रता का अभाव यानी कि अहंकार, और ये ऐसे भौतिकता के भावना का जड़ है। लेकिन इसके एग्जैक्टली उल्टा जो है वो आध्यात्मिक दुनिया में होता है। आध्यात्मिक दुनिया में जब हम भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो हम आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसकी झलक देखते हैं, झांकी देखते हैं, उसमें हमको केवल एकदम उसका जो विपरीत है वो सिखाया जाता है कि जब कोई अपराध होता है तो ये मानना चाहिए कि ये तो मेरा ही दोष है क्योंकि मैंने कुछ बुरे कर्म किए थे, उसके प्रभाव से भगवान ने इस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने भैरंगा शक्ति द्वारा मेरे लिए अनुभव दिया है। गुरुदेव आचार्यगण हमेशा ही समझाते हैं कि जब कोई बुरी घटना किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे लिए होती है तो तुरंत हमको समझना चाहिए कि ये मेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है, इस व्यक्ति को दोष देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने पूर्व कर्म ऐसे किए थे उसके फल स्वरूप मुझे भगवान ने उसका दंड दिया है। तो इसलिए भक्त जो है, अगर वो भक्त है वास्तव में, भक्त कौन होता है जो भगवान से भी भक्त नहीं होता है उसे भक्त कहते हैं, और वो अगर वास्तव में भक्त है तो उसकी पहली जो प्रतिक्रिया है रिएक्शन है वो ये है कि ये तो मेरे कर्मों के दंड देने के लिए भगवान ने नियुक्त किया गया है, भगवान ने नियुक्त किया है और इसलिए मैं उसको माफ़ी करने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि मुझे भगवान की जो इच्छा है उसको स्वीकार करना चाहिए और भगवान की इच्छा भी मेरे कर्मों के कारण ही है, इस तरह से भक्त सोचता है। कहने में यहाँ पर व्यास आसन में बैठकर ये कहना बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन बात है ऐसा सोचना, क्योंकि जब ठेस लगती है किसी के आत्मा को नहीं लगती है, आत्मा के ऊपर जो अहंकार है उसको ठेस लगती है जब कोई अपराध करता है, और बोलता कौन है, अहंकार बोलता है, आत्मा नहीं बोलती। जो आत्मा अहंकार के पूरी तरह से सूक्ष्म और तीव्र प्रभाव में रहती है वो आत्मा का अहंकार बोलता है, तुरंत प्रतिशोध प्रतिघात बदला इसकी भावना जागृत होती है। लेकिन आत्मा जो है वो मन और बुद्धि के ऊपर है और मन और बुद्धि हमको कहे कि ऐसा करो वैसा करो बदला ले लो, लेकिन जो भगवान का भजन करता है वो बुद्धि को भी शुद्ध कर लेता है और फिर उस बुद्धि के आधार पर अपने मन और मन को समझाता है ये नहीं करना है। इसलिए ऐसे हमारे गुरु भाई लोग कहते हैं कि कभी कुछ अपराध होता है किसी के द्वारा आपके ऊपर तो आप एक काम करो घर में जाके सो जाओ, सो जाएंगे तो जो प्रतिक्रिया होती है ना, एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, वो शांत हो जाती है। मन उद्विग्न जो होता है वो शांत हो जाता है। फिर अगर नींद होने के बाद में आप सोचेंगे शांति से क्या करना चाहिए, तो शायद आपके मन में अलग विचार आ सकते हैं। अगर हम ऑन द स्पॉट उसी समय उस घटना को प्रतिसाद देने का प्रयास करेंगे तो फिर कठिनता आ जाती है, और हमारे मन से, मुख से कुछ ना कुछ बोला जाता है जो परमानेंट उसका डैमेज हो जाता है, हाँ हमेशा के लिए उसका परिणाम रहता है। क्योंकि जब अपराध होता है तो सबसे पहले जिह्वा क्रोध के वश में आकर कुछ बोल देती है, और जब हम तीखे वचन बोलते हैं तो बहुत गहरा और बहुत दूर तक उसका असर होता है, लोग भूल नहीं पाते उसको। इसलिए भक्तों को ये जानना चाहिए कि जो दुनिया में जो भी होता है सब हमारे पूर्व कर्मों के रिएक्शन के रूप में भगवान उसका आयोजन करते हैं। नंबर वन बात तो ये है। दूसरी बात है क्षमाशीलता। क्यों करना चाहिए क्षमाशीलता हमको, क्या जरूरत है क्षमा करने की? अपराध तो हम पर हुआ है, चलो हम प्रतिसाद नहीं करते, रिएक्शन नहीं देते, क्रोध से नहीं बोलेंगे, शांति रहेंगे, लेकिन माफी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि माफ करने की जरूरत इसलिए है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम सबको भी माफ करना जाना जरूरी है। हम सब भी अपराधी हैं, हमारे हाथ से भी बहुत लोगों के जाने अनजाने में, ज्ञान में और अज्ञान में, दोनों ही तरफ से हमारी तरफ से लोगों के प्रति अपराध होते रहते हैं, और कभी कभी हम जानते भी नहीं कि हम क्या अपराध कर रहे हैं। ऐसे हम लोग दुनिया में, इस भौतिक दुनिया का जीवन ही ऐसा है, ये भौतिक दुनिया का जीवन जीते हुए बहुत मुश्किल है लोगों से वाद विवाद, झगड़ा, कलह ना होकर जीना। ये तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि भौतिक दुनिया में, कलयुग में जीते हुए ये कलह जो है वो हम पर लादा गया है। ये कलयुग का बहुत बड़ा स्वभाव है, दम्भ और कलह। दम्भ यानी कि झूठा अहंकार, मतलब जो मैं नहीं हूँ वो दिखाना, और कलह यानी झगड़ा, कोई कारण लगता नहीं झगड़ा होने के। और इसकी वजह से बिना वाद विवाद, बिना कलह के जी पाना, ये तो नामुमकिन है कलयुग में। तो फिर कैसे हम लोग जब तक भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाने का भगवान के धाम में प्रयास कर रहे हैं, तो उस उतना समय जो बीच में रखा गया है भौतिक दुनिया में और कलयुग में, कैसे गुजारे बिना इसके? क्योंकि ये तो होना ही वाला है। तो उसका मूल कारण यह है क्योंकि हमें भी लोगों से और भगवान से माफ़ी मिलना जरूरी है। जब तक हमें वैष्णवों से, समाज से और भगवान से माफ़ी प्राप्त नहीं होती है, क्षमा प्राप्त नहीं होती है, तब तक हम भगवान के धाम में जा नहीं सकते। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मुझे भी माफ़ी ज़रूरी है, तब तक हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। अगर आप लग, हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई माफ़ी की जरूरत, हमने किसी का अपराध ही नहीं किया है तो हमें माफ़ी की ज़रूरत क्या है, तो ऐसी भावना में हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए हमें जाने या न जाने, हमें पता होना चाहिए कि हम सदैव लोगों की क्षमा के पात्र हैं, और हमको मिलना भी चाहिए क्षमा। हमारे हॉस्पिस में जो यहाँ पर बना है परिक्रमा मार्ग पर, जब लोगों की मृत्यु होती है तो हमारे वैद्यकीय साइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब व्यक्ति कोई मृत्यु के सम्मुख आता है, बहुत नज़दीक आता है, समझो 2 महीने हैं, 2 हफ्ते हैं, 1 दिन है, जो भी है, तो सभी परिवार के जितने सदस्य हैं उनको बुलाकर, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो जानकार हैं, जो पहचान में थे, संबंध में थे, उन सबको बुलाते हैं और 6 प्रकार के आदान प्रदान करते हैं। उसके अंदर कहते हैं कि यस हम आप पर प्रेम करते हैं, और हम जानते हैं आप भी हम पर प्रेम करते हैं, ये 2 हो गए। दूसरा यह है कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, और हमारी तरफ से भी हम आपको कुछ भी हुआ तो माफ़ कर देते हैं। क्योंकि ये जीवन इतना लंबा होता है, उसके अंदर कई सारी घटनाएं होती है, बचपन से लेकर जवानी से, मध्यम आयु में, बुढ़ापे में, सब जगह पर ऐसी घटनाएं होती रहती है, कितनी कितनी घटनाएं याद रखें। तो हम कहते हैं, जो रिश्तेदार हैं, शायद मरीज बेहोश हो या ना हो, कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, हम आपको क्षमा करते हैं, और आप भी जो हमारे तरफ से जाने अनजाने में अपराध हुआ है उसको क्षमा कर देना। फिर कहते हैं कि आप जाने के बाद हम आपकी याद करते रहेंगे, हम आपको मिस करेंगे, और आपके जाने के बाद जो आपके प्रियजन हैं वो अपने आप को संभाल लेंगे, अपने आप की देखभाल करते रहेंगे। और लास्ट में कहते हैं कि अभी आप निश्चिंत होकर, मन को बिल्कुल हल्का करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के धाम में जाइए, कोई संकोच मत रखिए मन में। तो ये सब घटना इसलिए करते हैं कि आत्मा पर ये अपराध और बुरा लगना, इन भावनाओं का बोझ रहता है, और इसके बिना, इसके होते हुए भगवत धाम में हम नहीं जा सकते। हमारे घर मन में अगर कोई निगेटिव भावना है तो निगेटिव भावना लेके हम भगवत धाम का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। इसलिए जब तक ये भावना हमारे मन में है कि नहीं नहीं उसने मुझे बहुत दुख दिया था, ये भावना लेकर अगर मृत्यु के सामने हम जाते हैं तो फिर वापस दोबारा रिटर्न आकर इस दुनिया में जल देना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना हम उस समय मृत्यु के सामने खड़े होते हुए उतनी उत्कट और तीव्र घटनाओं का, भावनाओं का संघर्ष के समय ये सब करते करने के पहले पहले क्यों ना करें उसको, रोज के पैमाने पर क्यों ना करें। रोज सुबह उठते हैं तो क्या होता है, कल में जो घटना हुई थी, प्रधान घटनाएं जो मन पर असर कर गई, वो तुरंत ब्रश करते हुए याद आती। मेरा तो अनुभव ऐसा है, कल के दिन में क्या हुआ वो उस समय इतना लगता नहीं, लेकिन जब सुबह उठते ना अकेले में जब रहते हैं बाथरूम में, तो कल का क्या हुआ था उसके सब याद आती है। खास करके सुख की घटना के पहले दुख की घटना पहले याद आती, कुछ अच्छी घटना भी हो गई होगी उसकी याद पहले नहीं आती, जो दुख हुआ है वो पहले याद आता है, उस पर चिंतन होता है और उस प्रकार से सुबह की भावना बनती है। इसलिए क्यों ना हम रोज सुबह उठकर ये तय करें कि जो कल हुआ है वो सबको भूल जाना चाहिए, जो भी किसने अपराध किया उसको माफ कर देना चाहिए। वैष्णव जन तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि अपराध होने के पहले उनकी माफी वहां पहुंच जाती है, ये वैष्णवों का गुणधर्म बताया गया है। संत लोग बताते हैं कि वैष्णव वो है जो अपराध स्वीकार करता नहीं है और अपराध होने के पहले उसकी माफी उनको दे देता है, ये संत है। तो इतने सारे घटनाएं, हजारों सैकड़ों घटनाओं को याद करते करते एंड में अगर सबको बल्क में होलसेल में अगर माफी करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय मृत्यु के समय बहुत संघर्ष होता है, कश्मकश होती है, मन में बहुत विकल्प आते हैं, डर लगता है, बहुत सारा चैलेंज होता है, आह्वान होते हैं उस समय। उस समय भी ये सारा काम लास्ट मोमेंट पे रखने के बदले में रोज के पैमाने पर उसको बोलते ना, रोज कचरा घर में निकालते हैं, अगर 8 दिन में निकालेंगे तो बहुत जमा हो जाएगा, अगर महीने में निकालेंगे बहुत जमा। अभी कार्तिक यात्रा में कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, 20 दिन 30 दिन के बाद घर जाएंगे तो बहुत कचरा जमा हो जाएगा, लेकिन रोज अगर उसको निकालते रहेंगे, भाई को बोल के रखेंगे कि रोज आना ताला खोल के साफ करना, तो जब आप पहुंचेंगे तो इतना कचरा नहीं रहेगा। यही प्रिंसिपल है, यही तत्व है कि रोज के पैमाने पर अगर हम अपने हृदय के इन निगेटिव भावनाओं को अगर हम साफ करते रहेंगे स्वेच्छा से और इच्छा शक्ति से। इच्छा शक्ति क्यों? क्योंकि मन तो इन लोगों, इन वस्तुओं को, इन भावनाओं को जल्दी भूलना नहीं चाहता है। अगर माफी भी करनी है तो आप सोचेंगे आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आने दो उसको फिर देखेंगे। कोई मतलब बता रहा है प्रभु जी ठीक है अभी जाने दो, साथ में रहना है हमको, सब सेवा भी करनी है तो जाने दो, तो बोले कहीं कुछ नहीं, जब वो आएगा तब देखूंगा मैं, मतलब हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं। तो इन नेगेटिव भावनाओं को जितना हम लोग पोस्टपोन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उतना वो जैसे कि कोई बीज अगर जमीन पे डालते हैं ना, और अगर आपको 3 दिन के बाद में उसको उखाड़ के कहीं और डालना है तो 3 दिन में बहुत उसके जो जड़ हैं वो फैल जाती हैं, और आप बोलेंगे 5 दिन के बाद निकालेंगे तो और ज़्यादा जड़ फैल जाएगी। आपको अभी टेम्पररी यहाँ पेड़ लगाया और बाद में फिर उसको वहाँ शिफ्ट करना है, तो आपको जितने दिन देर लगाएंगे उतना उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये प्रकृति का नियम है ना, जो भावना हृदय में आप रखेंगे उसको जितना दिन रखेंगे उतना ज़्यादा वो गहरा अपना स्थान पक्का करेंगे वहाँ पर। इसलिए नेगेटिव भावनाओं को जितना जल्दी हो सके हृदय से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं, वो हमारे लिए अपने मन का, आत्मा का बोझ है। वो नेगेटिव भावना जब होती है तो वो दूसरों को कष्ट नहीं करती है, वो अपने को जलाती है। अगर हम अपना स्वीकार करते हैं और क्रोध करते हैं तो सबसे पहले वो हमको जलाती है, हमको दुख देती है, और जितना समय वो दुख देती रहती है उतना समय भजन अच्छा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कोई व्यक्ति अगर किसी को दुख हो रहा है किसी व्यक्ति के कारण, तो विचार में इतने हम लोग मशगूल हो जाते हैं कि हमको फिर हमारा जप में भी उसी का याद आता है, इसलिए ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि खास करके भक्तों के बीच में, हम लोग अभी भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्या नियम पालन कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वैष्णवों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग धाम वास कर रहे हैं कार्तिक में, ये सभी रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। 64 गतिविधियों में से ये जो 6 गतिविधियां हैं, तुलसी की पूजा करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब करने के लिए हमें दूसरे भक्तों की बहुत जरूरत होती है। आप टिम्बकटू में जाकर अकेले ये सब नहीं कर सकते, और थियोरेटिकली अगर कहा जाए तो कर भी सकते, लेकिन यशस्वी तरीके से ये सब भक्ति की गतिविधियां हम अकेले नहीं कर सकते। हम सब लोगों को भक्तों का संग जरूरी है इन सब क्रियाओं को करने के लिए। और अगर हम भक्तों के, और एक दूसरी बात है, भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यानी क्या, इस दुनिया में जितने अनंत लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग इस मार्ग में आते हैं। मतलब एक भक्त को देखना बहुत दुर्लभ है। अभी तो वृंदावन में देख रहा हूँ, तो कार्तिक में मायापुर में सब भक्तों का मेला लगा हुआ है, किसको किसको मिले और किसको नहीं मिलूँ, ऐसा वातावरण है। लेकिन पूरे भौतिक दुनिया का अगर आप ऊपर से अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम लोग हैं भक्त लोग। और उसमें भी रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भक्त लोग जो भौतिक कामनाएं रखते हैं, काम वासनाएं रखते हैं, ईर्ष्यालु हैं, इनका संग भी छोड़ देना चाहिए। तो बचे कितने भक्त उसमें से, जो प्रामाणिक है, जो शुद्ध भक्त नहीं भी होंगे फिर भी बड़े प्रामाणिक है, सिंसियर है, साधना बड़े प्रयास से कर रहे हैं और जो हमको प्रेरणा दे सकते हैं। और एक बात है, जब आप ज़्यादा सीनियर बन जाते हैं तो फिर हमको प्रेरणा देने वाले लोग कम कम हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या है, इसलिए सीनियर होना भी एक जरा तकलीफ वाली बात है। जितने अधिक साल बीतते हैं उसमें फिर हमारे लिए जो प्रेरणा और सत्संग वाले लोग होते हैं वो कम कम हो जाते हैं, सबके सामने हम दिल नहीं खोल सकते। तो मैं क्या बात बताना चाहता हूँ, किस बात को समझाना चाहता हूँ कि ये है कि भक्तों का संग जो है बहुत दुर्लभ है और बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हमको भौतिक जगत में रहते हुए सारे संघर्षों को अपनाते हुए भगवान को प्राप्त करना है, शुद्ध भक्ति के मार्ग को अपनाना है, तो हमको भक्तों की बहुत ज़रूरत है। और अगर इन भक्तों में भी अगर हम उसने क्या बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों किया, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक एक लिस्ट में ही व्यक्ति बाद होते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लिए जो आशा है कि भाई इनके सहारे हम आगे बढ़ेंगे, वो आशा ही हम काटते जा रहे हैं। पहले 50 लोग थे, अभी केवल 25 लोग रह गए हैं। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, किसी ने भी कुछ भी एक बार भी बुरा कहा तो उस पर काट मार देते हैं, ये मेरे लाइफ से अभी आउट। ये बहुत ही भयंकर प्रवृत्ति है, क्योंकि अगर समझो भगवान ने हम पर काट मार दिया, होपलेस, तो क्या होगा, जस्ट सोचो, किसी व्यक्ति ने, भक्त ने अगर हम पर काट लगा दिया तो हमारी क्या स्थिति होगी। इसीलिए इसी भावना को जानते हुए, क्योंकि हम भी काट लगाने लायक हैं, हमारे अंदर भी इतने दुर्गुण हैं कि किसी भी समय अगर हमारे अंदर के स्थिति को कोई समझ लेगा तो हम काट लगाने लायक ही होते हैं। और अगर भक्तों ने हम पर काट लगा दिया तो हम कहाँ जाएंगे, कौन बचा पाएगा। माया तो तैयार है लात मारने के लिए, सब भौतिकता वाले लोग जो है, समाज वाले, रिश्तेदार जो है, आपको गाली देने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, दे आर वेटिंग। इसलिए कभी भी किसी पर काट नहीं मारना चाहिए किसी अपराध के कारण, क्योंकि कितना भी कुछ भी हो जाए अगर वो भगवान के नाम का जप करता है तो वो वंदनीय है और वो पूजनीय है। क्योंकि जब वो भगवान के नाम का जप करता है तो निश्चित रूप से एक दिन वो भक्त बनेगा और भगवान के धाम जाएगा। इसलिए स्वयं ब्रह्मदेव किसी भी व्यक्ति को के द्वारा भगवान का नाम का जप का क्रिया चालू होता है तो वो आरती का पैराफेर्निलिया इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे हरि नाम के महिमा में लिखा है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन को यहीं से जाएगा गोलोक धाम, तो मैं उसकी पूजा करूंगा जब वो जाता होगा। इतना हरिनाम करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है और वंदनीय है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो हरिनाम करता है तो आज आपको जो दोष दिखाई पड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से कल खत्म हो जाएंगे, इतनी हरिनाम में शक्ति है। हमको उसमें श्रद्धा नहीं, हमको हरिनाम में श्रद्धा है जिसका उच्चारण वो कर रहा है। और तीसरी बात यह है, वो कितना भी बुरा होगा, एक प्रश्न हम हमेशा कहते हैं कि पूछो अपने मन को कि अगर मैं मरते समय अगर मैं मर रहा हूँ, मृत्यु प्राप्त हो रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए वो जप करेगा। तो उत्तर आएगा यस, करेगा ही। उस समय वो सारी चीज़ भूलकर भाग के आकर आपके कान में, अगर वो वहाँ रहेगा तो आपके कान में आकर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेगा। और रिश्तेदार जो भौतिकता के जीवन में जीते हैं वो कितने भी हमारे अच्छे संबंध में होंगे और खड़े होकर उस समय रोते भी होंगे, उनके मुख से भगवान का नाम आपके कान में नहीं आएगा, क्योंकि उनके उसका अभ्यास ही नहीं है, उनका ट्रेनिंग ही नहीं है उसके लिए। तो अगर आपको दो एक चॉइस दिया जाए कि आपके सामने एक प्रकार का व्यक्ति ऐसा है जो भक्त नहीं है, आपका रिश्तेदार है, अच्छा फ्रेंड है, आपका बड़ा अच्छा रिश्ता है उसके साथ में, और दूसरा ऐसा एक भक्त है जिसके साथ आपने झगड़े कर चुके हैं बहुत पहले, और दोनों में से आप किस व्यक्ति को पसंद करेंगे आपके सामने मृत्यु के सामने, तो आप कहेंगे नहीं भक्त होना चाहिए। क्योंकि भक्त जब भगवान का नाम का जप करता है तो उसकी जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें जब आप आते हैं तो उसकी भक्ति का प्रभाव आपको भी होता है। आपके मन में बुरे विचार है ना, समझो अचानक बस में आपके मन में कुछ बुरे विचार चल रहे हैं तो बस में एक भक्त आके चढ़ के आपके बाजू में बैठता है, उसके केवल बाजू में बैठने से आपका बुरा विचार बंद हो जाएगा, आपको डर लगेगा कहीं मेरे मन का विचार इसको समझ में नहीं आ जाए, है ना, होता है कि नहीं। अगर आपको लगता होगा कि मैं पेपर पढ़ रहा हूं उसमें कुछ गंदा न्यूज आ रहा है वो पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन भक्त बाजू में रहेगा तो आप पेपर बंद करके बाजू में रख देंगे तुरंत। आप मैगजीन लेके जा रहे हो ट्रेन में और आपको पढ़ने की इच्छा थी फिल्म स्टार की मैगजीन, लेकिन भक्त अगर बाजू में आ गया बाय द चांस तो वो मैगजीन आप अंदर रखेंगे और भगवद गीता निकाल के पढ़ने लगेंगे कम से कम उसको दिखाने के लिए। इसे कहते हैं भगवान के भक्त का प्रभाव क्षेत्र, केवल उसके होने से कुछ चीजें होती हैं। तो इसलिए ये सभी भक्तों का हमको बहुत जरूरत है, और इनके साथ में अगर हम मन में कुछ विकार बनाए रखेंगे तो नुकसान केवल हमारा है और किसी का नहीं। इन सब बातों को सोचते हुए क्षमाशीलता को अपनाना एक जरूरत बन जाती है। इट इज नॉट समथिंग लाइक ग्रेट वर्च्यू दैट आई वॉन्ट टू अचीव, ऐसा नहीं है कि मैं एक महान गुण को अभी अपनाने जा रहा हूं देखो सब लोग, ऐसा नहीं है। ये एक हमारी मूलभूत जरूरत बन जाती है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, न कि दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना महान भक्त हूं, देखो मैं इतना अपराध हुआ फिर भी मैंने क्षमा कर दिया, नहीं, मुझे मेरे मन को इन विकारों के रोग से मुक्त करना जरूरी है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता है। ये दवा बहुत कीमती और फॉरेन से आई है, सबको दिखा के खाने की जरूरत नहीं है, ये दवा मेरे लिए जरूरी है इन रोगों से मुक्त होने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी यहां बता रहे हैं कि क्षमाशीलता बहुत जरूरी है, और क्षमाशीलता होना एक उन्नत भक्त का लक्षण है। अगर वो क्षमा कर सकता है तो केवल वो भक्ति के आधार पर ही कर सकता है। भौतिक दुनिया में क्षमा ममा कुछ होता नहीं है, वो तो सॉरी बोल लेते हैं और सब खत्म होता है, ऐसा नहीं होता है, मन में वो दाग और जख्म बने रहते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में आने के बाद ही ये सब सद्गुणों का दर्शन हो सकता है, ये भी भक्ति का एक महात्म्य है कि केवल भक्ति मार्ग में आने के बाद ही इन सभी दिव्य सद्गुणों का दर्शन होने लगता है कि भाई ऐसे भी होता है, नम्रता भी होती है और सहनशीलता भी होती है, क्षमाशीलता भी होती है, स्वच्छता भी हृदय की होती है, प्रेम भी होता है, मैत्री भी होती है, कृपा भी होती है, सब दिव्य गुण जो है ये भक्ति में आने के बाद ही नजर आते हैं। उसमें से एक महान गुण है क्षमाशीलता, और इसको अपनाने से हम सब लोग हर स्थिति में बड़ी आसानी से भगवान की ओर प्रगति कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि जो लोग क्षमा करते हैं वो बड़े दुर्बल होते हैं, क्षमा वही करता है जिसको अटैक करने को नहीं आता है, तो वो तो क्या कहते हैं विवश होकर क्षमा करने को सोचता है। तो लोग सोचते हैं बाहर की दुनिया में नम्रता और क्षमाशीलता ये दुर्बलता का लक्षण है, ऐसे बाहर के लोग सोचते हैं। जब भी हम लोग किसी को माफ़ करते हैं सोचते हैं इसमें शक्ति नहीं है उसको प्रतिकार करने की, इसलिए वो हेल्पलेसली असहाय होकर उसको क्षमा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि संत लोग ऐसे नहीं होते, उनके अंदर शक्ति होती है फिर भी वो क्षमा करते हैं। उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज को उस ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया, तो ब्राह्मण का पुत्र था वो, नौ सखिया भक्त था वो, ब्राह्मण का पुत्र था ही, उसके अंदर शाप देने की शक्ति तो थी, लेकिन परीक्षित महाराज के सामने वो बहुत सामान्य व्यक्ति था। रूपा जी भी कई जगह बताते कि चाहते तो परीक्षित महाराज उसको उसी के उसी समय दंड देकर उसको शाप को खत्म कर सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे कि वो इस भगवान की इच्छा को समझ गए कि ये भगवान की इच्छा है, नहीं तो ऐसे अचानक मेरे हाथ से अपराध होना, वो भी प्यास के लिए, वो तो भूख प्यास पर उन्होंने बहुत बड़ा पहले ही नियंत्रण कर चुके थे, वो बड़े महान भक्त थे। भागवत में वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज का चरित्र का वर्णन करते हैं, उसका व्यक्तित्व का वर्णन भी आता है, उसके अंदर लिखा है कि सभी पांडवों के और पुराने सभी वैष्णवों के उनके अंदर गुण थे, एकदम जन्म सिद्ध भक्त थे वो। तो प्यास में बश होकर किसी साधु का अपराध करना तो उसके स्वभाव में कोई था ही नहीं। साधुओं को वंदन करता है, जो साधनियों को पूजनीय मानता है, उसके तरफ से पानी ना मिलने से इतना बड़ा अपराध तो हो ही नहीं सकता है। ये भी खुद भी समझ गए हो कि अगर होता है, हो गया है, उसके पश्चात छाप भी अचानक आ गया है, इसका मतलब ये भगवान की इच्छा है। और बिना कोई प्रतिघात प्रतिसाद या प्रतिरुशोध लेते हुए सीधे से वो चले गए, राजवस्त्र उतार दिया, कोपिन पहनकर फिर साक्षात्कार के लिए और मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है ये जानने के लिए निकल पड़े वो। और उस ब्राह्मण पुत्र के जो पिताजी मतलब शमिक ऋषि, वो भी पश्चाताप करते, अरे बालक तूने ऐसा क्यों किया, दंड बालक है तू। तो परीक्षित महाराज ने स्वयं उदाहरण में बता दिया है। और देखिए एक क्षमाशीलता का परिणाम क्या है, ये बात अभी आखिरी हमारे चर्चा की बात होगी। क्षमाशीलता का परिणाम क्या है, बहुत दिव्य अनाकलनीय समझ में आने वाली सुंदर दिव्य घटना कृपा होती है। समझो अगर वहां पर झगड़ा होता और उन्होंने उस शाप को अपनी शक्ति से शून्य कर देते परीक्षित महाराज, तो क्या आज हमारे सामने भागवत जी प्रकट होता, बिल्कुल नहीं होता। इतनी बड़ी घटना है आध्यात्मिक इतिहास में, इस विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में सुनहरी अक्षरों से लिखा हुआ ये घटना है कि श्रीमद् भागवत का प्रकट हो गए। कृष्णे सुधाम उपगते, कृष्ण भगवान अपने धाम में प्रकट, धाम में अंतर्धान होने के बाद में स्वयं कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए, पृथ्वी के मतलब यह लोक के क्षितिज पर प्रकट हो गए। और ये प्रकट होने के लिए भगवान ने ये घटना का आधार लिया, इस घटना के माध्यम से, लीला के माध्यम से ये सुंदर शास्त्र प्रकट किया। तब परीक्षित महाराज को पता नहीं था कि मैं अगर माफ करूंगा तो आगे ये महान घटना होने वाली है, चलो माफ कर देते हैं। उनको पता नहीं था, जैसे ग्वाल बालों को पता नहीं था कि अभी भगवान गिरिराज को उठाने वाले हैं, फिर भी श्रद्धा रखकर वो गए। हम सबको पता है, अभी कथा होती ना, सबको पता होता है अभी इसके बाद भगवान उठाने वाले हैं। अरे बालक भी बोल सकता है कि अभी गोवर्धन को उठाएंगे भगवान, लेकिन उनको उस समय वो पता नहीं था, फिर भी श्रद्धा से भंगोर वर्षा में त्रस्त होते हुए भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे पूरे विश्वास के साथ कि यही बचाएंगे। उसी तरह से परीक्षित महाराज को ये पता नहीं था कि अभी ये घटनाक्रम ऐसा है, इसका स्क्रिप्ट लिखा गया है, इसके आगे मुझे माफी करनी है, उसके आगे भागवत जी प्रकट होगा, ऐसा नहीं था। ये भक्त का एक महान गुण है कि वो चाहते नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो उसका ऐसा फल मिलना चाहिए, अगर मैं माफी करूंगा तो भगवान के द्वारा मुझे कोई कृपा होनी चाहिए। लेकिन जब भक्त स्वभाव से ही स्वतः स्वयं स्फूर्त होकर जब क्षमा देते हैं भक्त लोग, तो आगे जाकर बहुत सुंदर, जो हमको समझ में नहीं आ गई, अचिंत्य घटनाएं होती है। जब हम क्षमा करते हैं, हमारा ऐसा अनुभव है कि पहले से भी रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। पहले रिश्ता इतना अच्छा नहीं था भक्तों के साथ में, लेकिन जब हमारे तरफ से क्षमा हो जाती है तो बहुत ही गहरा और प्रेमपूर्वक रिश्ता बनता है हमारी प्रवृत्ति को देखते हुए। जब हम भक्त हमारे अंदर वो प्रवृत्ति को देखते हैं कि मैंने तो अपराध किया है, मैं समझ रहा हूँ, फिर भी बड़े विशाल हृदय से इन्होंने हमको माफ कर दिया, इसी भावना से, इस भावना के अनुभव करते हुए तुरंत रिश्ता जो है और गहरा बन जाता है काफ़ी समय के लिए, क्योंकि क्षमाशीलता ये दिव्य गुण है, प्रतिशोध लेना ये भौतिक गुण है, और भौतिक गुण जो है उसका प्रभाव कम समय के लिए होता है और आध्यात्मिक गुणों का प्रभाव चिरंतन काल के लिए होता है। बाय नेचर अध्यात्म जो है वो चिरंतन है, भौतिकता जो है वो टेम्पररी है। जो जड़ वस्तु जड़ गुण है, जड़ क्रियाएं हैं, उनका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, जो चेतन वस्तु का प्रभाव है वो अधिक समय के लिए होता है। तो उसी रूल से अगर हम सोचेंगे तो क्षमाशीलता तो दिव्य गुण है, और क्षमाशीलता अगर हम अपनाएंगे तो उसका प्रभाव और परिणाम बहुत समय तक रहेगा। और हमने उस समय बदले की भावना को अपनाया और प्रतिशोध की भावना अपनाया और कुछ क्रिया किया उस प्रकार से, तो क्या होगा, उसका परिणाम बहुत गहरा होगा, भौतिक स्तर पर होगा और टेम्पररी भी होगा। और भक्तों को क्या देखना है कि भक्तों के बीच में का जो रिश्ता है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटीज इज वेरी वेरी प्रेशियस, ये हमारे पूर्ण भक्ति मार्ग के प्रगति का एक जड़ है ये। अगर हम भक्तों को वैल्यू देते नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम लोग भक्त लोग कितने दुर्गुण दिखाते हो, उससे अच्छे बाहर के लोग अच्छे, उसके हमारे फ्रेंड अच्छे, उससे हमारे नेबर अच्छे, ऐसे बोलना बहुत आसान लगता है, कभी कभी भक्तों के द्वारा ऐसे अनुभव होते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी भक्त की वैल्यू कम नहीं होती है जो भगवान के नाम का जप करता है, क्योंकि वो भगवान का सहारा ले चुका है। जैसे कोई पेशेंट है जो रास्ता में घूम रहा है और एक पेशेंट है वो डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दोनों खांसी कर रहे हैं, दोनों को बुखार आ रहा है, लेकिन भाग्यवान कौन है जो डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो जानता है मैं बीमार हूँ और किसी डॉक्टर का सहारा ले चुका है। उसी तरह से भक्तों के अंदर बहुत दुर्गुण दिखाई भी देंगे, लेकिन वो अगर जप कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए ये वो पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। रूपा जी कहते थे कि हॉस्पिटल मंदिर जो है वो एक हॉस्पिटल है और हम सब लोग उसमें भर्ती हैं, क्योंकि हमके अंदर बहुत हमारे अंदर बहुत दुर्गुण बने हुए हैं, हम जान चुके हैं, इसलिए हम इलाज करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो बाहर की दुनिया में हमारे अंदर ऐसा कुछ अंतर नहीं है, हम लोग इलाज कर रहे हैं इसलिए हमारे अंदर आशा है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर शिव जी को ही विनती कर रहे हैं और उस विनती के द्वारा हम सबको भी आह्वान कर रहे हैं कि आप भी हम भी जब आगे जाकर ऐसा समय आएगा कि हमारा अपराध हो जाएगा, कोई क्रोधजनक घटना हो जाएगी, तो हम तुरंत उसको माफ़ी कर दें और उस बात को वहीं समाप्त कर दें ताकि हमारी भक्ति के मार्ग में आगे जाकर बाधा ना आ जाए। और एक उदाहरण है अम्बरीश महाराज का, दुर्वासा मुनि के द्वारा उनको कितनी पीड़ा दी गई बिना मतलब की, हाँ इतनी पीड़ा, ऐसा नहीं कि दो शब्द बोल दिया और वहाँ समाप्त हो गए, एक बाल को जमीन पर पटक कर राक्षस को उत्पन्न किया, उसको समाप्त करने का आदेश दे दिया, इतना क्रोध इतना अपराध। फिर भी ऐसे ही कहा गया है कि अम्बरीश महाराज ने कभी वो अपराध स्वीकार ही नहीं किया, वो तो ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे, फिर चक्र पीछे लगा उनके, चक्र ने उनको राक्षस को पहले मारा, फिर उनके पीछे लगे, फिर वो ब्रह्मा लोग गए, फिर कैलाश गए, फिर विष्णु लोग गए और पूरा यात्रा करके लौट के आए, तभी ये खड़े थे कि महाराज जी आप आए नहीं भोजन करने के लिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब उन्होंने अपराध स्वीकार ही नहीं किया उनका, इसका मतलब अम्बरीश महाराज को ये जो अपराध या पीड़ा वो स्पर्श नहीं कर पाई, क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि से इतने उन्नत थे, इसलिए इस भौतिकतावादी घटनाओं का परिणाम उन पर नहीं हुआ। प्रहलाद जी भी यही कहते हैं भागवत भगवान को कि आप तो कह रहे हैं कि आप मेरे मतलब पिताजी हिरण्यकश्यपु द्वारा मुझे इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी, और भगवान उनको खुद बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए आपने कितना सहन किया, हाँ भगवान बोल रहे हैं, भगवान स्वयं प्रकट होकर बोल रहे हैं ये प्रहलाद मेरे लिए तुमने कितना सहन किया। लेकिन प्रहलाद जी क्या बोल रहे हैं, भगवान मुझे तो पता ही नहीं लगा कि हर समय आपका नाम का मैं उच्चारण कर रहा था, पहाड़ से पटक गया तो आपने झेल लिया, और जब हाथी के पाँव दिया तो हाथी ने पाँव ही नहीं दिया, सांपों के बीच फेंका गया तो सांपों ने काटा ही नहीं, विष पिला दिया तो विष का असर ही नहीं हुआ, तो भगवान कब मुझे कष्ट हुआ, मैं तो आपके गोद में था हमेशा, आपके गोद का सहारा लेकर चल रहा था, तो बाहर की सारी इतनी पीड़ाओं का मुझे कभी स्पर्श ही नहीं हुआ। ये भक्त है जो भागवत में वर्णित है कि जिन पर आध्यात्मिक दृष्टि आध्यात्मिक स्तर के उन्नति की वजह से ऐसे निगेटिव भावनाओं का परिणाम ही नहीं होता है, वो सोचते ही नहीं ऐसे, या तो दुर्गुण किसी के अंदर देखते नहीं है या हमारे ऊपर जो अपराध होते हैं उसको भी स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए हमारा जो श्रीमद् भागवत ये शास्त्र है बहुत महान शास्त्र है, इसके अंदर ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कथाएँ दी गई हैं, अगर भौतिकता के मूड से आप पढ़ेंगे तो ले क्या भागवत में भी ये झगड़े वगड़े छाप वाप सब दिखा है, कैसा शास्त्र है ये, हाँ सब झगड़ा वगड़ा हम जो करते हैं यही सब इसमें दिखा है, लेकिन इसमें एक दिव्य संदेश हमारे लिए छुपा हुआ है, वो संत की कृपा से ही भक्तों की कृपा से ही हमारे लिए प्रकट हो सकता है। इसके लिए हमारे लिए मैसेज क्या है, क्या सीखना है, इतना बड़ा महान व्यक्ति भी ऐसा घिलौना व्यवहार कर रहा है, ऐसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है तो हम क्या करें, फिर हमारी क्या स्थिति है, इतना बड़ा व्यक्ति भी ऐसे कर रहा है, नहीं ये हम सीख रहे हैं कि भौतिक दुनिया में जब तक है सभी घटनाओं का और भावनाओं का प्रभाव हमारे पर होता है, और कैसे इससे मुक्त होना है ये मार्ग श्रीमद् भागवत में दिखाया है। तो क्षमाशीलता एक सुंदर गुण है, मैं आप सबसे वैष्णवों से श्री वृंदावन धाम में बैठते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी इसको अपना सकूँ आपकी कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, क्योंकि बैठ के बोलना तो बहुत आसान होता है लेकिन उसको आचरण में लाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर हम जानते हैं कि हमारा कार्य बहुत मुश्किल है तो वो भी संतों की कृपा से भक्तों की कृपा से सहज बन सकता है, इसलिए मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो आप कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का। सभी लोगों को कार्तिक मास की बधाई है, कार्तिक मास। यस प्रभु जी,
जो आवेग आता है उसी
गुस्से का जो आवेग आता है तो उसको उसी से रोकना कैसे। हमारे बचपन में हमारी माता कहती थी, जब भी गुस्सा आता है और जब भी डर लगता है तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे डर और क्रोध दोनों भाग जाते। लेकिन उसके लिए भी अभ्यास करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि अभी बोला इसलिए कल से हम तुरंत हो जाएगा। वो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का हमेशा उच्चारण करने का अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करते रहेंगे तो हो सकता है वो क्रोध आने पर भी तुरंत मुंह में आएगा। और जब भी कोई क्रोध आता है हमको एक चीज़ ज़रूर करना कि तुरंत उस पर रिएक्ट मत करना, उसका जो रिएक्शन है क्रोध का उसको नहीं अपना, थोड़ा सा लंबी सांस लेना, बैठ जाना आँख बंद करके या तो सो जाना, उसके बाद में सोचना क्या करना है उसके बारे में। एकदम इम्प्रॉम्प्टू उसके लिए एक्शन मत लेना, वो बहुत डेंजरस होता है, फिर हमारे लिए द्वारा किया हुआ जो एक्शन है उसको हम वापस नहीं ले सकते। ये शब्द हैं, एक्शन है, उसको हम लोग वापस नहीं कर सकते। नो रिटर्न जर्नी, एक बार बाण निकला तो निकल जाता है। इसलिए क्रोध आने पर थोड़ा सा शांति रखना चाहिए, तुरंत रिएक्शन देंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम।